بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ نساء کی 58ویں اور 59ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری شہات محمد انور نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ وَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। निसंदेह ईश्वर तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उनके मालिकों को लौटा दो, और जब कभी लोगों के बीच फैसला करो तो न्याय से फैसला करो। निसंदेह ईश्वर तुम्हें अच्छे उपदेश देता है, निश्चित रूप से वो सुनने और देखने वाला है। हे ईमान वालों, ईश्वर का आज्ञा पालन करो तथा पैगंबर और स्वयं तुम में से ईश्वर द्वारा निर्धारित लोगों का आज्ञा पालन करो। यदि किसी बात में तुम में विवाद हो जाए तो उसे ईश्वर की किताब और पैगंबर की ओर पलटाओ, यदि तुम ईश्वर और प्रलय पर ईमान रखते हो। निसंदेह विवादों को समाप्त करने के लिए ये पद्धति बेहतर है और इसका अंत अधिक भला है।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाइएगा। श्रोताओ, आज सोमवार है, फरवरदीन की 23, शाबान की 29 और अप्रैल की 12 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के बाद बारी होगी साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण की, और दोस्तों हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा जल संकट। अब आप रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने नतंस परमाणु प्रतिष्ठान पर हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार बताया और कहा कि इंतकाम जरूर लिया जाएगा। यमन की सेना ने सऊदी अरब के कई प्रतिष्ठानों पर मिसाइलों और ड्रोन विमानों से बड़ा हमला किया है। भारत में कोरोना महामारी के भयानक प्रकोप से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका में पुलिस के हाथों एक अश्वेत की हत्या के बाद तनाव फैल गया है। और अब आप मरियम मेहरदादी और हसन अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि नतंस घटना का ईरान इसराइल से प्रतिशोध लेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इंशाल्लाह इसी सप्ताह अगर प्रयास को अंतिम रूप दे दिया गया तो बुधवार से अमरीका के एकपक्षीय प्रतिबंधों को समाप्त कराने के परिप्रेक्ष्य में वार्ता आरम्भ होगी। उन्होंने कहा कि आज रात को हम रूसी विदेश मंत्री के मेजबान होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नतंस घटना के बारे में किए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि नतंस में जो अप्रिय घटना घटी है वो इस बात की पुष्टि करती है कि इसमें ज़ायोनी शासन का हाथ है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंची है, परंतु ये मानवता के खिलाफ अपराध है। सईद खतीबजादे ने कहा कि अगर लक्ष्य ईरान की क्षमता को कमजोर करना था तो ज़ायोनी कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और जिन सेंट्रीफ्यूज मशीनों को निकाला गया है वे सब IR-1 प्रकार की थीं और अब उनके स्थान पर नई सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कुद्स के अतिग्रहणकारी शासन ने ईरानी लोगों के धैर्य का प्रतिशोध लेने का प्रयास किया और ज़ायोनी शासन से बदला उचित समय पर लिया जाएगा।
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ज़ायोनी अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों को समाप्त कराने में ईरान को मिलने वाली सफलताओं का बदला लेना चाहते हैं, परंतु इस्लामी गणतंत्र ईरान उन्हें इसकी अनुमति नहीं देगा। विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा व विदेश नीति आयोग की बैठक में रविवार को नतंस में होने वाली घटना की ओर संकेत किया और संवेदनशील समय में परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु वैज्ञानिकों की सुरक्षा पर बल दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि ज़ायोनी शासन के राजनीतिक और सैनिक अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे प्रतिबंधों को समाप्त कराने की दिशा में मिलने वाली सफलताओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि ज़ायोनी सोच रहे हैं कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, मगर ईरान की परमाणु प्रगति से ज़ायोनियों को जवाब मिल जाएगा।
ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता ने कहा है कि देश का परमाणु उद्योग इतना गहरा व ठोस है कि आतंकी कार्रवाइयों से उसके विकास की राह में कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती। बेहरूस कमालवंदी ने सोमवार को काशान के एक अस्पताल में बात करते हुए नतंज में शहीद अहमदी रोशन एनरिचमेंट प्लांट में हुई आतंकी घटना की तरफ इशारा किया और कहा कि परमाणु उद्योग में लड़ाई जारी है और इस मैदान में प्रतिरोध के माध्यम से ईरान का महान राष्ट्र विजय हासिल करेगा। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता ने कहा कि देश के परमाणु उद्योग में सक्रिय लोगों की प्रतिबद्धता और त्याग व बलिदान के साथ ही संभावनाओं और दक्षताओं के साथ इस मैदान में जीत निश्चित है और इसमें कोई शक नहीं है। याद रहे कि बेहरूस कमालवंदी रविवार को नतंज में शहीद अहमदी रोशन एनरिचमेंट प्लांट के निरीक्षण के दौरान कई मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़े थे और उनके सिर व हाथ में चोटें आई हैं। रविवार की सुबह नतंज के परमाणु संवर्धन के प्रतिष्ठान में बिजली आपूर्ति के नेटवर्क में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें इसराइल का हाथ बताया जा रहा है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख डॉक्टर अली अकबर सालेही ने इसे परमाणु आतंकवाद बताया है।
ज़ायोनी शासन के टेलीविजन ने घोषणा की है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उस शिखर पर पहुंच गया है जहां से हम ईरान की प्रगति व विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। इसराइली टीवी के 12वें चैनल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल की ओर से इतनी अधिक गोपनीय कार्रवाइयों के बावजूद ईरान समस्त क्षेत्रों में प्रगति करने में सफल हो गया है। ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इसराइल की गोपनीय कार्रवाइयों की रिपोर्ट में आया है कि ईरान से बदला लेने का समय आ चुका है और इसराइल को चाहिए कि वो इस बारे में गंभीरता से विचार करे। इसराइली टीवी की रिपोर्ट में आया है कि अलबत्ता वे यानी इसराइली ईरानी इसराइली कार्रवाइयों पर खामोश नहीं बैठेंगे और तेल अविव को चाहिए कि वे चुनौतियों व धमकियों को हल्के में न ले।
ज़ायोनी सूत्रों ने सूचना दी है कि तेल अविव में कार बम का एक विस्फोट हुआ है जिसमें एक ज़ायोनी हताहत और कई अन्य घायल हो गए हैं। ज़ायोनी समाचार पत्र जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि रविवार की रात को तेल अविव के खुलून क्षेत्र में विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति हताहत और कई अन्य घायल हो गए। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई है कि इस वाहन पर जो विस्फोटक चिपकाया गया था उसी की वजह से ये विस्फोट हुआ है। ज़ायोनी शासन के इमरजेंसी विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी ने कहा है कि जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ है उसके आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो पूरी गाड़ी जल रही थी। ज़ायोनी सूत्रों के अनुसार इसराइली पुलिस ने इस घटना के कारणों के बारे में जाँच आरम्भ कर दी है।
दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री चेंग सी क्यून ने रविवार को ईरान के उपराष्ट्रपति जहांगीरी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों की ओर संकेत किया और कहा कि अगले वर्ष दोनों देशों के संबंधों के 60 साल पूरे हो जाएंगे जबकि ये सहयोग आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगा। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी तेहरान यात्रा इस बात की सूचक है कि सियोल इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ संबंधों में विस्तार का इच्छुक है और इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों के आधार को नई मजबूती मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ईरान के उपराष्ट्रपति को अपने देश की यात्रा का निमंत्रण भी दिया है।
ईरान की उच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात में कहा है कि इराक से अमरीकी सैनिकों के बाहर निकलने से इस देश में स्थिरता पैदा करने वाली प्रक्रियाएं मजबूत होंगी। कासिम मोहम्मद जलाल आरजी ने जो ईरान की उच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी के औपचारिक निमंत्रण पर ईरान के दौरे पर हैं सोमवार की शाम अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात की और द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में विचार विमर्श किया। इस मुलाकात में अली शमखानी ने एक क्षेत्र में अस्थिरता के कारणों का उल्लेख करते हुए अमरीका को अशांति व संगठित आतंकवाद का सबसे बड़ा कारक बताया और कहा कि इराकी संसद ने अपने देश से अमरीकी सैनिकों को बाहर निकालने का जो बिल पास किया है उसे जल्द से जल्द लागू करना स्थिरता लाने वाली प्रक्रियाओं की मजबूती को मजबूती और गति प्रदान करेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए कि प्रतिरोध के कमांडरों शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस की हत्या के मामले को उठाना और इस आतंकी अपराध का आदेश देने वालों और इसे अंजाम देने वालों पर मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित करवाना दोनों देशों के रक्षा सहयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है और हमें इस संबंध में इराक सरकार से अधिक अपेक्षा है क्योंकि शहीद सुलेमानी उनके मेहमान थे। इस मुलाकात में इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम मोहम्मद जलाल आरजी ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिरता स्थापित करने में ईरान की रणनीतिक भूमिका और आतंकवाद से संघर्ष की सराहना करते हुए ईरान और इराक के बीच व्यापक सहयोग में विस्तार की जरूरत पर जोर दिया।
यमन की सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि सऊदी अरब के अंदर बड़े पैमाने पर ड्रोन व मिसाइल हमले किए गए हैं। इन हमलों में 17 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अल मसीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर यहिया सरी ने सोमवार को एक बयान में बताया कि 30 शाबान नामक एक ऑपरेशन यमन के खिलाफ जारी अत्याचारपूर्ण घेराबंदी और हमलों के जवाब में सऊदी अरब के अंदर 17 ड्रोनों और 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया और इसके तहत समाद 3 टाइप के 10 ड्रोनों ने जद्दा और अल जुबैल में आरामको तेल कंपनी की रिफाइनरियों को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि खमीस मुशाइत और जीजान के क्षेत्रों में 2 संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर 5 कासिफ 2 के ड्रोनों और 2 बद्र 1 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया।
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अत्यधिक भयावह हो गई है और सोमवार को इस देश में एक दिन में मिलने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 1.69 लाख नए मरीज मिले हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही भारत अब कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है।
भारत में कुरान मस्जिद की 26 आयतों को आतंकवाद से जोड़कर उन्हें कुरान से हटाने के आग्रह वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता और यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिजवी ने अपनी याचिका में कहा था कि कुरान की इन 26 आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें हैं। उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि ये याचिका विचार करने योग्य नहीं है। पीठ में जस्टिस बी आर गवई और ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे।
अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में उस स्थान के करीब जहां पिछले साल जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस ने बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी थी, एक 20 वर्षीय अश्वेत युवा की पुलिस ने रविवार को हत्या कर दी, जिसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पुलिस ने रविवार को 20 वर्षीय डॉन्टे राइट को गोली मार दी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत वहीं हुई जहां जॉर्ज फ्लॉयड को एक गोरे पुलिसकर्मी ने उनके गले पर घुटना रखकर मार दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मिनियापोलिस शहर के बाहर लोगों ने रविवार की रात प्रदर्शन किए। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे पवित्र रमजान महीने से पहले मस्जिदुल अक्सा में नमाजियों के स्वागत के लिए की जा रही तैयारियों की। और फिर बात करेंगे कोरोना महामारी से इटली की दिन प्रतिदिन खराब होती आर्थिक स्थिति की।
In uno dei momenti più difficili della nostra storia, del nostro paese.
और अंत में चलेंगे भारत, जहां सर्वोच्च अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पवित्र कुरान की 26 आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया है।
تو سب سے پہلے چلتے ہیں فلسطین اور بات کرتے ہیں پوتر مسجد الاقصی میں جاری رمضان کے مبارک مہینے کی تیاریوں کی۔ 7,000 فلسطینی سوئم سیویوں نے رمضان کے مبارک مہینے میں مسجد الاقصی میں نمازیوں کے سواگت کے لیے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں۔ اس سمبندھ میں فلسطین سے IRIB کے سنواد داتا خالد سبارنا ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسن عباس کی آواز میں۔ سات ہزار سوئم سیوی فلسطینیوں نے اسلامی وقف منترالے کے سمنوے سے پوتر مسجد الاقصی کو مبارک مہینے رمضان میں نمازیوں کے سواگت کے لیے تیار کر دیا ہے۔ پرانگڑوں کی دھلائی، مسجد کے بھیتر سینیٹائزیشن، ساتھ ہی بھیڑ کو روکنے کے لیے اپایوں اور نمازیوں کو پردان کی جانے والی سویدھا کو دھیان میں رکھنے جیسے کام انجام دیے گئے ہیں۔ ہم نے پرتھم بیت المقدس کے 12ویں کاریکرم کے ڈھانچے کے بھیتر اس کھیتر میں پرویش کیا تاکہ مسجد الاقصی کے پرانگڑوں کی صفائی کریں اور پوتر رمضان مہینے میں اس مسجد میں آنے والے نمازیوں کا سواگت کرنے کے لیے پرستھیوں کو پرشست کریں۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے جس کا بہت مہتو ہے۔ مسلمانوں کی سب سے پوتر مسجدوں میں سے ایک اس مسجد میں ایشور کے مہمانوں کے سواگت کے لیے سبھی کاموں کو انجام دیا جا چکا ہے۔
اليوم احنا نيجي كل
ہر سال پوتر مہینے رمضان سے پہلے مسجد الاقصی کی صفائی اور مبارک رمضان مہینے کے سواگت کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں۔
مسجد الاقصی
پچھلے سال ویاپک طریقے سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے کارن مسجد الاقصی نمازیوں کے لیے نہیں کھلی تھی، لیکن اس ورش کٹھن سواستھ پرستھیوں کے بیچ مسجد کو تیار کرنا ایک بہت بڑی چنوتی مانا جا رہا ہے۔
خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین۔
اور اب چلتے ہیں اٹلی، جہاں کورونا مہاماری نے عام لوگوں کے جیون کو بری طرح پربھاوت کر دیا ہے۔ اس سمے اٹلی میں بے روزگاروں کی بڑھتی سنکھیا نے 15 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس بارے میں روم سے IRIB کے سنواد داتا حمید معصومی نجات ادھک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد مہندی کی آواز میں۔
کورونا مہاماری اٹلی کے مدھیہ ورگ اور غریب ورگ کی استھتی کو دن پرتدن دینی کرتی جا رہی ہے۔ کورونا کی وجہ سے اٹلی کی خراب ہوتی آرتھک استھتی اور بڑھتی بےروزگاری نے اس دیش میں جیون ویتیت کرنے کے لیے ضروری چیزوں میں بھی کمی لا دی ہے، اور ویلفیئر سوسائٹی دوارا مفت میں دیے جانے والے کھادیہ پدارتھوں کی لائنوں میں پہلے سے ادھک لوگوں کی سنکھیا دکھائی دے رہی ہے۔ اٹلی کے ریڈ کراس سوسائٹی کے پرمکھ نے اٹلی میں زیادہ تر لوگوں کی خراب ہوتی آرتھک استھتی کے بارے میں کہا کہ ہماری سوسائٹی اٹلی کے لوگوں کو مدد پہنچانے والی ویلفیئر سوسائٹیوں کا پورا سہیوگ کر رہی ہے۔
In uno dei momenti più difficili della nostra storia, del nostro paese.
ہم دیش کے اتہاس کے سب سے برے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک سال کے بھیتر دیش میں ضرورت مندوں کی سنکھیا 2 برابر ہو گئی ہے، وشیش کر وہ پریوار جن کے پاس کورونا سے پہلے کوئی استھائی نوکری نہیں تھی اور وہ پچھلے ایک ورش سے گہرے آرتھک سنکٹ سے جوجھ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے بھی پریوار ہیں جنہیں ایک دن کا بھی کھانا جٹانے میں سمسیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ استھتی بہت ہی بھیاوا ہے۔ ایسے پریوار نہ کیول آرتھک سنکٹ سے جوجھ رہے ہیں بلکہ ان کی مانسک استھتی پر بھی اثر پڑا ہے۔ اس بیچ اٹلی کے ڈاکٹروں اور مانواधिकार کارکرتاؤں نے اٹلی میں بنا گھر کے لوگوں کی سنکھیا میں 50,000 لوگوں کی اور وردھی ہونے پر چیتاونی دی ہے کہ سرکار نے سماج کے ایسے پیڑت لوگوں کو بھلا دیا ہے جو سب سے ادھک آرتھک اور سواستھ سنکٹ سے جوجھ رہے ہیں۔ اٹلی کی سانکھیکی کیندر کی رپورٹ کے انوسار پچھلے ایک سال کے بھیتر اس دیش میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو سمپورن غریبی ریکھا سے نیچے جیون ویتیت کر رہے ہیں ان کی سنکھیا پچھلے 15 ورشوں کے مقابلے میں سب سے اوپر پہنچ گئی ہے۔
حمید معصوم نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم۔
اور اب رخ کرتے ہیں भारत का, और बात करते हैं इस देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा पवित्र कुरान की 26 आयतों के खिलाफ दायर याचिका की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जहां याचिका को खारिज कर दिया है, वहीं याचिकाकर्ता को बुरी तरह फटकार लगाते हुए उस पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की उस विवादित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने जनहित याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए क्योंकि उसके अनुसार ये आयतें कुरान का हिस्सा नहीं हैं और ये आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। जस्टिस फरी नरीमन, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऋषिकेश राय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि वास्तव में ये पूरी तरह तुच्छ याचिका है। याचिकाकर्ता ने कुरान की उन 26 आयतों को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया था और तर्क दिया था कि मदरसों में इसकी शिक्षा देकर आतंकी बनाए जा रहे हैं। शिया धर्म गुरु मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा,
अच्छी खबर हमें मिली है और इस वक्त अभी मुजफ्फरनगर के कस्बे मंसूरपुर में है, वहाँ टेलीफोन के जरिए हमें खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया ने उस मनहूस और मनहून और खबीस शख्स की जो अपील थी जिसमें उसने कुरान मजीद की 26 आयतों को निकालने की अपील की थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया है और उसको उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है और उसको फटकार भी पूरी तरह से लगाई है। अभी पूरी तरह से आर्डर हमारे सामने नहीं है कि उसके लफ्ज़े क्या है, लेकिन ये कि इसको जलील किया है और उसको फटकार लगाई गई है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी अदालत आलिया का और सुप्रीम कोर्ट का और जजों का जिन्होंने इंतहाई साफ से काम लिया और आगे के लिए रास्ते बंद कर दिए उन्होंने और किसी भी मुकद्दस किताब के ऊपर कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं कर पाएगा और इसमें अदालत आलिया का बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा रोल रहा इसमें और इसको जुर्माना लगाया है। इससे भी अंदाजा होता है कि अदालत आलिया के अमल से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और जज्बात बहुत नाराज़ हुए हैं और इस खबीज को, इस मलून को बहुत अच्छा सबक मिला है और सब कुछ ये फ्रॉड है, टोटल ये फ्रॉड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नकलोजाल है।
वसीम रिजवी की इस विवादित याचिका पर मुस्लिम जगत ने कड़ा विरोध जताया था और बहुत से हिंदुओं और दूसरे धर्मों के नेताओं और धर्म गुरुओं ने भी कहा था कि कुरान मानवता और सभी धर्मों के बीच शांति का संदेश देता है। पिछले दिनों एक इस्लामिक सम्मेलन में जिसमें शिया सुन्नी समुदाय के उलमा शामिल हुए थे, वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि उसे देश के किसी भी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया जाएगा। वसीम के परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया है और उसका कहना है कि वे इस्लाम विरोधी हो गए हैं। वसीम रिजवी की इस विवादित याचिका दायर किए जाने के बाद मुसलमानों का गुस्सा भड़क उठा था और जगह जगह इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किए गए थे। अनेक मुस्लिम संगठनों ने वसीम रिजवी की निंदा करते हुए उस पर कुरान की आयतों को गलत तरीके से पेश करके असहमति पैदा करने का आरोप लगाया था। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना महमूद दरियाबादी ने कहा कि कुरान की कोई भी आयत मनुष्य को हिंसा के लिए नहीं उकसाती। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करके उस पर धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने का आरोप लगाया था और याचिकाकर्ता से माफी मांगने की मांग की थी। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. तस्लीम रहमानी ने समुदायों के खिलाफ शत्रुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से याचिका दाखिल करने के आरोप में वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग की है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستو، ہماری آج کی سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا جل سنکٹ، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے کاریکرم وش درپڑ۔
विश्व दर्पण। दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। आज हम वियना में ईरान व गुट चार धन एक की वार्ता के बारे में बात करेंगे। JCPOA या परमाणु समझौते के संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक मंगलवार और शुक्रवार को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित हुई, जिसमें ईरान और गुट चार धन एक के सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। ईरान के अलावा यूरोपीय संघ, जर्मनी, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने बैठक में इस बात पर सहमति जताई कि ईरान के खिलाफ लगे हुए प्रतिबंधों को समाप्त कराने के लिए विशेषज्ञ स्तर की वार्ता आगे भी जारी रहे। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का कहना था कि वार्ता सार्थक रही, लेकिन ये एक कठिन बातचीत है।
These talks have been described as constructive, as businesslike, as accomplishing what they set out to do. And that is true. We would characterize it that way as well. We would also, however, hasten to not allow expectations to outpace where we are. After all, we have said this will be hard.
दो अलग अलग कार्यदल गठित कर दिए गए हैं। इनमें से एक गुट प्रतिबंधों की समाप्ति और दूसरा परमाणु समझौते के पालन के मामलों की समीक्षा करेगा। ईरान के वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख सैयद अब्बास इराकची ने मंगलवार की वार्ता के बाद पत्रकारों को बताया कि वार्ता सार्थक रही है। उन्होंने وارتہ کے سندرب میں اور بھی کئی بندوؤں پر پرکاش ڈالا۔
میتونم بگم کہ در مجموع جلسه سازنده ای بود۔ ما توافق کردیم کہ دو گروه کاری تشکیل بشه، یکی در حوزه تحریم ها و دیگری در حوزه هسته ای۔
عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ جو دو ورکنگ گروپ بنائے گئے ہیں ان میں سبھی سمبندھت پکشوں کے پرتندھی ہیں، جبکہ امریکہ کا کوئی پرتندھی شامل نہیں ہوگا کیونکہ ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ سے سیدھی وارتہ نہیں ہو رہی ہے
بدون حضور امریکہ۔ امریکہ در هیچ به اصطلاح جلسه ای که ایران حضور داشته باشه نخواهد بود، این سیاست قطعی ماست و هیچ تردیدی در این نیست، همه امور هم به همین ترتیب برنامه ریزی شده۔
عباس عراقچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں ورکنگ گروپ اس بندو پر کام کر رہے ہیں کہ ایران پر امریکہ کی اور سے لگائے گئے سارے پرتبندھوں کو ایک ساتھ ہٹانے کا کیا طریقہ ہوگا۔
این جلسات کارشناسی تشکیل میشه، دو تا کار گروه، وظیفه اینها این هستش که مجموعه اقداماتی رو که آمریکایی ها باید انجام بدن تا رفع کامل تحریم ها در یک مرحله صورت بگیره رو مشخص بکنن۔
امریکہ نے وینا وارتا میں شامل ہونے کی کوشش کی تھی اور یورپ نے اس کی سفارش بھی کی تھی، لیکن ایران نے اسے سویکار نہیں کیا اور اس کا کہنا تھا کہ یہ بیٹھک پرماڑو سمجھوتے کے سدسیہ دیشوں کی ہے اور چونکہ امریکہ اس سمجھوتے کے سنیکت آیوگ کا سدسیہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس میں بھاگ نہیں لے سکتا۔ اگر اسے وارتا میں شامل ہونا ہے تو سب سے پہلے وہ پرتبندھوں کو سماپت کر کے سمجھوتے میں شامل ہو جائے اور پھر وارتا میں سملت ہونے کی بات کرے۔ دوسرے شبدوں میں، جس طرح امریکہ پرماڑو سمجھوتے سے باہر نکلا تھا اسی طرح اس سمجھوتے میں واپس آئے۔ ایران اسی کے ساتھ پہلے ہی یہ بھی اسپشٹ کر چکا ہے کہ وارتا پرماڑو سمجھوتے اور اس کے انچھیدوں کے بارے میں نہیں ہوگی، بلکہ پرتبندھ ہٹائے جانے اور سمجھوتے کے پالن کے بارے میں ہوگی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وارتا کا مکھیہ ایجنڈا یہ ہے کہ اس کے خلاف لگے پرتبندھوں کو سماپت کیا جائے، پھر وہ اس کا ستیاپن کرے گا اور دیکھے گا کہ پرتبندھ ویوہارک روپ سے سماپت ہوئے یا نہیں، اور اگر وہ صحیح میں سماپت ہوئے ہوں گے تو پھر تہران نے جوابی کارواہی کے طور پر اپنی جن پرتیبدھتاؤں کا پالن کرنا چھوڑ دیا تھا وہ ان کا پھر سے پالن کرنے لگے گا۔ پاکستان کے ورشٹھ ٹیکہ کار سجاد ترین کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن پرشاسن کو آبھاس ہو چکا ہے کہ ایران پرمانو ڈیل کے بارے میں ٹرمپ پرشاسن نے بھاری غلطی کی تھی۔
دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ ٹرمپ کی شکست کے بعد جو بائیڈن جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے، بلکہ کمپین ہی جب وہ چلا رہے تھے، ان کو ٹرمپ کے جو جرائم تھے، جو انہوں نے بطور امریکی صدر دنیا بھر میں جو جرائم کیے، وہ ان کا ازالہ کرنے کا انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو اس کے جرائم ہیں، جو اس نے وارداتیں کی ہیں ٹرمپ کی، اس کو سمیٹنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو، یورپ کو اور امریکہ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ایران پر پابندیاں لگانے سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ الٹا ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے ایران میں، اور ایران جو ہے وہ خطے میں ایک بڑا ملک بن رہا ہے، ارد گرد کے ممالک جو ہیں وہ اس کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو امریکہ کو اس بات پر اور جو ٹرمپ نے جو کچھ کیا اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وینا میں ان کا ڈیلیگیشن گیا، وہ ڈیلیگیشن اس اجلاس میں نہیں رہا، لیکن اس کے بعد بھی وہ ان سے مشاورت کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وینا میں جو امریکہ نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتا ہے، پابندیاں ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مرحلہ وار جو ہے صورتحال کو دیکھ رہا ہے ابھی۔ کیونکہ دوسری طرف جو ہے جو ایران کے نظریاتی ممالک مخالف ہیں، لائک سعودی عرب، یہ تیسرے، انہوں نے بڑی کوشش کی ہوئی تھی، بڑی انہوں نے کوشش کی کہ بذریعہ اسرائیل جو ہے وہ کسی طرح جو بائیڈن کو قابو کیا جائے اور اس کے اسرائیل کا دباؤ ڈلوایا جائے، لیکن وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ امریکہ کو اس بات کا مکمل احساس ہو گیا، جو بائیڈن انتظامیہ کو، کہ ایران سے تعلقات بہتر کیے بغیر اب ان کا گزارا نہیں ہے۔
سجاد ترین کا کہنا ہے کہ یورپی دیش اب امریکہ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس نے ایران پر جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا یورپ اور امریکہ کو نقصان ہوا ہے۔
ایران نے جس طرح ٹرمپ کے سامنے ایرانی قوم کھڑی ہوئی ہے، ایرانی لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کو احساس ہو گیا امریکی جو ہے وہ بہت چلاک ہے، بہت ہوشیار ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہو رہا ہے، تو وہ بالکل پلٹا مارتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ اپنا شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ وائنا مذاکرات میں وہ آئے، اجلاس میں باہر بیٹھ رہے، اجلاس میں نہیں رہے، اس کے باوجود جو آج ترجمان نے کہا ہے وائٹ ہاؤس کی کہ جی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں اور 4+5 4+1 گروپ سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں یورپین، تو میں سمجھتا ہوں پورا یورپ جو ہے وہ امریکہ کو یہی مشورہ دے رہا ہوگا، یورپین لیڈرشپ جو ہے وہ یہی مشورہ دے رہی ہوگی کہ ایران پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، یورپ کو اور امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے، اور ان کو، یہ امریکن لیڈرشپ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے۔
ایک اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے ورتمان راشٹرپتی جو بائیڈن کافی پہلے سے اپنے دیش کے پورو راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ دوارا دنیا بھر میں کی گئی کارروائیوں کا ورودھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے چناوی پرچار میں بھی اس مدعے کو زوردار طریقے سے اٹھایا تھا۔ راشٹرپتی بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اپنے دیش کو پھر سے پیرس جلوایو سمجھوتے میں شامل کیا، جسے ٹرمپ نے اس سمجھوتے سے الگ کر دیا تھا۔ بائیڈن نے چناؤ پرچار میں اس بات پر بھی بل دیا کہ اگر وہ راشٹرپتی بنے تو امریکہ پرمانو سمجھوتے میں پھر سے شامل ہو جائے گا۔ البتہ ٹرمپ نے اپنے ستہ کال میں جتنی گڑبڑ کی ہے اسے سدھارنے میں بائیڈن کو کافی سمے لگ سکتا ہے، لیکن پرمانو سمجھوتا دنیا کے بڑے اہم سمجھوتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ 12 برسوں کی کوٹنیتی اور گہن وارتا کا پریڑام ہے۔ ساتھ ہی سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد نے ایک پرستاؤ کے مادھیم سے اس کی پشٹی کی ہے۔ دنیا کی بڑی شکتیوں کی سملتی سے یہ سمجھوتا ہوا تھا۔ اگر یہ سمجھوتا ناکام رہا تو پھر امریکہ و انیہ بڑی شکتیوں پر سے دنیا کا وشواس ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بائیڈن کو لگتا ہے کہ امریکہ کو اس سمجھوتے میں واپس آنا چاہیے، لیکن راشٹرپتی بننے کے بعد انہوں نے جو رویہ اپنایا اس میں اور ٹرمپ کے رویے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک اور بات اس سمبندھ میں یورپ کی بھومیکا کو لے کر ہے۔ تین بڑے یورپی دیش اور یورپی سنگ اس سمجھوتے کے سدسیہ ہیں، یا دوسرے شبدوں میں پورا یورپ اس میں شامل ہے۔ تو اگر وہ صرف امریکہ کے دباؤ میں آ کر اس انتراشٹریہ سمجھوتے کے پالن سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو وہ اپنی سوادھینتا کو داؤں پر لگا رہا ہے اور اپنی انتراشٹریہ چھوی کو پہلے سے زیادہ خراب کر رہا ہے۔ یورپ کے پاس اتنی شکتی، اتنے سنسادھن اور اتنی مضبوط ارتھ ویوستھا ہے کہ وہ چاہے تو امریکہ کی دھوس دھمکی کے سامنے ڈٹ جائے اور اپنے سمان کی رکشا کرے، لیکن کھیت کی بات ہے کہ یہ اچھا شکتی یورپی دیشوں میں دکھائی نہیں دیتی اور وہ اب بھی امریکہ کے پچھ لگو ہی بنے رہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک بات تو ہے کہ جب تک ایران کے خلاف لگائے گئے سبھی پرتبندھوں کے پوری طرح ختم ہونے سے پہلے وہ پرمانو سمجھوتے کی ان پرتبدھتاؤں کا دوبارہ پالن ہرگز نہیں کرے گا جن کا پالن اس نے سمجھوتے کے 26ویں اور 36ویں انوچھید کے تحت روک دیا ہے۔ اور جہاں تک ایران کی کامیابی کی بات ہے تو اگر امریکہ پرمانو سمجھوتے میں واپس نہیں آتا ہے تب بھی ایران کامیاب ہے، کیونکہ اس نے امریکہ کے ہر پرکار کے دباؤ کو ناکام بنایا ہے۔ ایران کے خلاف ٹرمپ کے ادھکتم دباؤ کی وفلتا کی بات تو اب امریکی ادھیکاری بھی مان رہے ہیں۔ ٹیکاکار سجاد ترین کا ماننا ہے کہ امریکہ کے پاس پابندیاں ہٹانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔
امریکہ نے یہ محسوس کر لیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پابندیاں لگا کر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا، الٹا اس کو دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا ہے۔ یہ بات جو بائیڈن انتظامیہ کو اچھی طرح معلوم ہو گئی ہے، اب یہ ان کی خواہش پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ گروپ بن رہے ہیں اور گروپ جو ہے یہ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے گا کہ بریک تھرو ہو گئی ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کچھ وہ نہیں ہے کہ اب وہ ایران سے پابندیاں ختم کرے، امریکہ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا، کیونکہ وہ جتنا امریکہ کو دبانا چاہ رہا تھا، اب ایران کو دبانا چاہ رہا تھا پابندیاں لگا کر، جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ اس میں ناکام ہو گیا ہے۔ پھر اوپر سے وہ امریکہ کے تابوت میں آخری کیل چائنا نے ٹھوک دی کہ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ایران میں دی، اس کے بعد اب امریکہ کے پاس یہی آپشن رہ گیا ہے کہ ایران سے اپنے تعلقات بہتر کرے، پابندیاں ختم کرے اور اپنے معاملات کو آنے والے دنوں میں اور زیادہ اچھا کرے۔ اگر وہ ایران سے تنازع برقرار رکھے گا، پابندیاں برقرار رکھے گا، تو اب شاید ایران کو نقصان نہیں ہوگا، امریکہ اور یورپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔
امریکی سرکار وینا وارتا میں شامل ہونے کی اتنی اچھک تھی کہ اس نے اپنا ایک پرتنیدھی منڈل وینا بھیج دیا تھا، لیکن ایران اسے وارتا میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جہاں تک یورپ کی بات ہے تو اسے بھی امریکہ سے زیادہ اپنے اور دنیا کے ہتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور پرمانو سمجھوتے کے انترگت جو آرتھک لابھ ایران کو ملنے چاہیے ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ پرمانو سمجھوتے کے معاملے میں اس کی رہی سہی عزت داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ کاریہ وشو درپن اپنے انت کو پہنچا، ہمیں انومتی دیجیے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔
جل سنکٹ۔
श्रोता मित्रों, जल संकट की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं जहरा जैदी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम ये देखेंगे कि धरती पर पानी कितना है, क्या उसके लिए युद्ध हो सकता है। धरती के लगभग 72% भाग पर पानी है, जिसमें से 97% पानी खारा है। इस पानी को संभव नहीं है कि पिया जाए। धरती पर जल चक्र लगभग बिना परिवर्तन का है। ये लगभग 486 अरब वर्ग किलोमीटर है। समुद्रों के अतिरिक्त उस पानी को मीठा पानी कहा जाता है, जो कृषि, उद्योग और पीने के लिए प्रयोग होता है। बारिश से जो पानी मिलता है, उससे नदियां भरती हैं और यही पानी भूमिगत जल स्रोतों को भी भरता है। किसी भी क्षेत्र में जल स्रोतों में फिर से पानी भरने की प्रक्रिया उस क्षेत्र में जल चक्र पर निर्भर होती है, लेकिन प्रायः किसी भी क्षेत्र में जल चक्र पूरा होने में 10 साल का समय लग सकता है।
दुनिया के अलग अलग इलाकों में पानी की उपलब्धता बहुत अलग अलग है, जो असंतुलित है। देशों में तो अंतर है ही, लेकिन एक देश के विभिन्न इलाकों में भी फर्क है। उदाहरण स्वरूप, सबसे कम पानी अरब देशों में है, जहां प्रति व्यक्ति 1175 वर्ग मीटर पानी उपलब्ध है। लेकिन यह प्रतिशत है, मगर हर एक को पानी की यही मात्रा उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में मोरतानिया, इराक और सीरिया का नाम लिया जा सकता है, जहां प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2500 वर्ग मीटर है। लेकिन पर्शियन गल्फ के तटवर्ती देशों में प्रति व्यक्ति 100 वर्ग मीटर ही पानी उपलब्ध है।
सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश प्रसाद शर्मा जल संकट की समस्या से निपटने के बारे में कहते हैं,
जबकि पृथ्वी पर 70% जल है, फिर भी जल का संकट है। कारण यह है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का सिर्फ 3% जल ही मानव के प्रयोग के लायक है एवं समस्त जीवधारियों के प्रयोग के लायक है, बाकी सारा जल खारा है, 3% ही मीठा है। उस 3% में से भी 1% को हम सिर्फ यूज करते हैं, 2% वेस्टेज जाता है, यह भी सत्य है। विशेषज्ञों की राय के मुताबिक 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर पानी था, लेकिन 2000 में जाकर यह 2300 और 2025 का विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि यह 1600 रह जाएगा।
दूसरा उदाहरण दक्षिणी एशिया का दिया जा सकता है, जिनमें हिंद महासागर के तटवर्ती देश भी शामिल हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है। अलबत्ता विश्व बैंक जैसे कुछ संगठन ईरान को उन देशों की श्रेणी में नहीं गिनते। इन देशों में 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 23% भाग हैं। इन हालात में अगर सब कुछ ऐसे ही रहा, तब भी जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसके दृष्टिगत प्रति व्यक्ति पानी की दर को 2450 वर्ग मीटर माना जाता है, और ये धीरे धीरे कम हो रहा है।
दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, फिलीपीन, कंबोडिया, वियतनाम और कुछ दूसरे छोटे देश शामिल हैं। इस इलाके के लोगों की एशिया के अन्य देशों में रहने वालों की तुलना में अधिक पानी उपलब्ध है, लेकिन तूफान और खराब मौसम तथा सुविधाओं के अभाव की वजह से मीठे पानी के भंडार को सही रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। इन पूरे इलाके में सबसे अधिक आबादी इंडोनेशिया और फिलीपीन में है, जहां 8179 और 4953 वर्ग मीटर पानी वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।
पूर्वी एशिया में चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान हैं। इन देशों की आबादी लगभग 1.59 अरब है और इस क्षेत्र के प्रति व्यक्ति के लिए पानी 2126 वर्ग मीटर सालाना है। पश्चिमी यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और लक्जमबर्ग हैं। इन सभी देशों में ऑस्ट्रिया में सबसे अधिक 9180 वर्ग मीटर और जर्मनी में सबसे कम 1860 वर्ग मीटर है। इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न इलाकों में अलग अलग मात्रा में पानी की उपलब्धता है और उसी आधार पर इन इलाकों के लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। मौसम और पानी की उपलब्धता के अतिरिक्त तकनीक, सुविधा, आबादी, आर्थिक व सामाजिक स्थिति भी जल स्रोतों के प्रयोग को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में पानी के किनारे ही सामान्य तौर पर लोग बसते थे ताकि पानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।
महिला सामाजिक कार्यकर्ता रेणुका देवी कहती हैं कि प्राचीन काल में पानी को देखते हुए ही बस्तियां बसाई जाती थीं।
जल स्रोत में जीवन बसता है, इसलिए अधिकतर मंदिरों, घाटों और वैदिक पाठशालाओं का निर्माण जलाशयों के किनारे हुआ। पर अंग्रेजों को राजाओं द्वारा तालाबों, जलाशयों पर खर्च करना फायदेमंद नहीं लगा। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि तालाबों से स्थानीय जलवायु या पर्यावरण पर क्या असर होता है। नतीजा ये हुआ कि पहले तो तालाब जलाशयों को मिलने वाला राज्य का समर्थन कम हो गया।
दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में प्रति व्यक्ति सालाना 5195 वर्ग मीटर पानी उपलब्ध है, लेकिन मात्र 191 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति की मात्रा ही प्रयोग में आती है। इसी तरह इस महाद्वीप के सभी देशों में पानी की उपलब्धता का अध्ययन भी संभव नहीं है और न ही आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी विश्व के कई संगठनों के अनुसार अफ्रीका में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक पानी का प्रयोग मिस्र में होता है, जबकि इस देश में वर्षा से प्राप्त होने वाला पानी न के बराबर है।
एशिया के महत्वपूर्ण देशों में पानी के इस्तेमाल की स्थिति आशाजनक नहीं है। इन देशों में 3 अरब से अधिक लोग रहते हैं और जिन देशों में अधिक आबादी है वहाँ प्रति व्यक्ति पानी का इस्तेमाल भी कम है, जिसका मतलब यह है कि इन देशों में पानी कम है। एशिया में सऊदी अरब में सबसे कम बारिश होती है, जबकि इंडोनेशिया में सबसे अधिक। फाओ के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब अपने जल स्रोतों से 9 गुना अधिक पानी का प्रयोग करता है, लेकिन पर्शियन गल्फ के अन्य देशों की ही तरह खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से आयात करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सामान्य रूप से एक देश के नागरिक कितना पानी इस्तेमाल करते हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश प्रसाद शर्मा जल संकट के समाधान के बारे में कुछ उपाय पेश करते हुए कहते हैं,
हल यह कि हम लोगों को पानी के मूल्य को समझना होगा और पानी को समुचित ढंग से प्रयोग करना होगा। दुरुपयोग एक बूंद का भी नहीं करना है, क्योंकि पानी परमात्मा की, प्रकृति की ऐसी देन है जो बनाया नहीं जा सकता।
अगर यूरोप पर नजर डालें तो वहां विभिन्न प्रकार के मौसम नजर आते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत वो पर्याप्त जल स्रोतों से समृद्ध है। दक्षिणी यूरोप के देश अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करते हैं। तुर्की और स्पेन के अलावा बाकी देशों में कृषि के लिए पानी का प्रयोग कम है, जो मौसम और तापमान के कारण है। जर्मनी खेती के लिए सबसे कम पानी का प्रयोग करता है और इस देश के प्रयोग का 82% पानी उद्योग में खर्च होता है। इसी तरह इस देश में प्रयोग होने वाले पानी का 80% भाग धरती पर मौजूद जल स्रोतों से लिया जाता है। इसी तरह जर्मनी सारे खाद्य पदार्थों का निर्यात और आयात दोनों करता है, जो यूरोपीय संघ के अन्य देशों के साथ उसके मजबूत व्यापारिक रिश्तों का चिन्ह है।
यूरोप के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था उद्योग और सेवाओं पर आधारित है और चूंकि पानी के पर्याप्त स्रोत हैं और खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए उचित मौसम भी है और तकनीक व पूंजी के क्षेत्र में भी उन्हें कोई समस्या नहीं है, इसलिए उनके पास अपनी जरूरत से अधिक खाद्य पदार्थ मौजूद रहता है। यूरोप में जल चक्र से प्राप्त होने वाले पानी का सबसे अधिक प्रयोग स्पेन करता है और ये देश 28.6% पानी प्रयोग करता है, जबकि स्वीडन और रूस 1.5% प्रयोग करते हैं। यूरोप में कृषि के लिए सबसे अधिक पानी का प्रयोग तुर्की और स्पेन करते हैं, जिनका प्रतिशत 75% और 64% है। जब पानी का इतना महत्व है तो फिर उसको बचाएं कैसे? पानी का महत्व वर्तमान काल में ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई अनभिज्ञ हो, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न कारकों और राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से धरती पर जीवन के लिए बेहद मूल्यवान चीज की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती जाती है, जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक खतरनाक स्थिति है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप साप्ताहिक कार्यक्रम जल संकट सुन रहे थे। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे थे। हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण आपको पसंद आया होगा और आप कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों व प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाएंगे। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम और ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। एहसान अब्बास और साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.